नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने फिर कहा, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं, 74 दिनों की आरक्षित क्षमता सुनिश्चित की। इसराइल के ईरान पर फिर हमले करने से पश्चिम एशिया संघर्ष तेज। इसराइल का होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही रोकने के जिम्मेदार ईरान के नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसिरी को मार गिराने का दावा। भारत आयात पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा और स्टार्टअप आधारित खनन तंत्र को मजबूत कर रहा है। भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी देश के विभिन्न हिस्सों में मनाई जा रही है और दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-20 चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज कहा कि भारत के पास कुल 74 दिनों की आरक्षित क्षमता है और कच्चे तेल उत्पाद भंडार और भूमिगत भंडारों में बने विशेष कार्यनीतिक भंडारण को मिलाकर वास्तविक स्टॉक लगभग 60 दिनों का है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने फिर कहा है कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। एक रिपोर्ट।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश भर में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने बताया कि लगभग एक महीने की आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित है और अतिरिक्त खरीद को लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार तेल कंपनियां प्रतिदिन 50 लाख से अधिक सिलेंडर सफलतापूर्वक वितरित कर रही हैं। जमाखोरी या कालाबाजारी से बचने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके वाणिज्यिक सिलेंडरों का आवंटन भी बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि घरेलू उत्पादन के अतिरिक्त अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से 800,000 मीट्रिक टन एलपीजी कार्गो पहले से ही सुरक्षित है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत में केवल 2 दिन का पेट्रोल शेष है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। इकाई ने सटीक जानकारी की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से ही करने का आग्रह किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि भारत के जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर रहे हैं।
Our ships are passing through Strait of Hormuz.
हमारे कुछ जहाज होर्मुज पार कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। ये भारत की स्थिति को दर्शाता है। भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हैं जो सभी पक्षों से बात कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति और खाड़ी देशों के प्रमुखों से बात की है। भारत चुनौतियों के बावजूद बहुत ही बेहतर स्थिति में है।
इस बीच पश्चिम एशिया में पिछले 6 घंटों में संघर्ष और तेज हो गया है। इसराइल ने ईरान में फिर हमले किए हैं और लेबनान में भी अपने अभियान बढ़ाए हैं। इसराइली अधिकारियों का कहना है कि उनकी सेनाओं ने इस्फहान शहर में कई हमले किए। इसराइल ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड नौसेना के एक वरिष्ठ कमांडर अली रेजा तंगसिरी के मारे जाने का दावा किया है। इसराइली सेना ने उन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजरानी को बाधित करने के प्रयासों में एक प्रमुख व्यक्ति बताया। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है और चेतावनी दी है कि यदि वार्ता विफल होती है तो और भी गंभीर परिणाम होंगे। ईरानी सरकारी मीडिया ने इसराइल और खाड़ी देशों के ठिकानों की ओर नए मिसाइल और ड्रोन लॉन्च की सूचना दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
संयुक्त अरब अमीरात में आज हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने ईरान से दागी गई 15 बैलिस्टिक मिसाइल और 11 ड्रोनों को विफल कर दिया। इसके साथ ही संघर्ष की शुरुआत से अब तक 372 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1826 से अधिक ड्रोन रोके गए हैं। अबू धाबी में रोकी गई एक मिसाइल का मलबा मुख्य सड़क पर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों में से एक की पहचान भारतीय नागरिक के रूप में हुई है। संयुक्त अरब अमीरात में मलबे के गिरने से अब तक मरने वालों की संख्या 11 हो गई है, जबकि 166 अन्य लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है, पूरे संयुक्त अरब अमीरात में हवाई सुरक्षा प्रणालियां हाई अलर्ट पर बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा दे रहा है, स्टार्टअप आधारित खनन तंत्र को विकसित कर रहा है और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूत घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण तथा विकास ट्रस्ट के शासी निकाय की एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में खोज में तेजी लाने, घरेलू क्षमता को मजबूत करने और भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। श्री सिंह ने कहा कि विशेष रूप से लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज की गति वैश्विक मांग और भारत की रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार ने देशभर में दुर्घटना की आशंका वाले स्थलों की पहचान की है। मंत्रालय ने इन मार्गों पर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए व्यापक उपाय किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा अभियान 2026 के अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि दुर्घटना की आशंका वाले लगभग 350 चिन्हित स्थलों में से लगभग 280 में सुधार किया गया है।
रोड इंजीनियरिंग में काफी कमियां थी, हम लोग उसको पूरी तरह सुधार कर रहे हैं और जो अनेक एक्सीडेंट होते हैं उसको हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं और हमने वो आइडेंटिफाई किए और अभी हमने 40,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा किए हैं। जो लैंडस्लाइड्स होती है जैसे हिमालयन टेरेन में, उत्तराखंड, हिमाचल या कश्मीर में, वहां हमने 350 ऐसे स्पॉट आइडेंटिफाई किए, उसमें से 280 स्पॉट को हमने वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया, वो भी इम्प्रूव किया।
रेल पटरियों को पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे देशभर में भूमिगत मार्ग बनाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस पहल के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन भूमिगत मार्गों को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इनका निर्माण केवल 12 घंटे में पूरा हो सके। ये रेलवे भूमिगत मार्ग उन स्थानों पर बनाए जाएंगे जहां पटरियों के एक तरफ आवासीय बस्ती है जबकि दूसरी तरफ खेत, स्कूल, शमशान घाट या अन्य आवश्यक सुविधाएं स्थित हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि विधानसभा चुनाव और उपचुनाव तैयारियों के दौरान 400 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 5,100 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड और 5,200 से अधिक स्थैनिक निगरानी दल तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने कहा है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी जिससे मतदाताओं के बीच नकद और मुफ्त उपहारों के वितरण को रोका जा सके। 15 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए पुदुचेरी का दौरा करेंगे। असम में विधानसभा चुनाव प्रचार ने गति पकड़ ली है। राजनीतिक दलों ने अपना संपर्क अभियान तेज कर दिया है और उम्मीदवार रैलियों, जनसभाओं और घर घर जाकर प्रचार के माध्यम से मतदाताओं को लुभा रहे हैं। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन आज कुल 117 उम्मीदवारों ने पर्चे वापस ले लिए। 140 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2,125 नामांकन दाखिल किए गए थे जिनमें से 1,651 स्वीकार किए गए। जांच के दौरान 357 नामांकन खारिज कर दिए गए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रविन्द्र नारायण रवि ने आज कोलकाता में सीमा सुरक्षा बल BSF की पूर्वी कमान के प्रमुख सुमित शरण से मुलाकात की। लोकभवन में आयोजित बैठक में सीमा सुरक्षा की वर्तमान स्थिति, तैनाती योजनाओं और चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए BSF की तैयारियों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में आलू किसानों की बिगड़ती स्थिति और निर्यात संबंधी प्रतिबंधों को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शामिक भट्टाचार्य ने संवाददाताओं को बताया कि बंगाल सरकार के प्रतिबंधों के कारण स्थानीय किसान अपनी उपज को अन्य राज्यों में बेच नहीं पा रहे हैं। पहले बंगाल में उगाई हुई आलू को उड़ीसा भेजा जाता था, लेकिन अब इन पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आज 6 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि माओवादियों ने पुलिस को 3 हथियार भी सौंपे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ये आकाशवाणी है। देश में आज रामनवमी हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। ये पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने राम नवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान राम की महाकाव्यमय जीवन यात्रा हमें सार्थक जीवन के लिए सत्य, न्याय और सद्गुण के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि त्याग, तपस्या और संयम से परिपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन हर परिस्थिति का पूर्ण शक्ति से सामना करने की प्रेरणा देता है। मालदीव के माले में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन भारत ने आज पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। भारत के लिए विशाल यादव ने 1 और उमांग डोडुम ने 2 गोल किए। भारत और बांग्लादेश अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेले जा रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के दूसरे दिन आज तैराकी, भारोत्तोलन, हॉकी और फुटबॉल के मुकाबले हुए। एक रिपोर्ट।
कर्नाटक के तैराक मणिकांत एल ने आज 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी की। वहीं ओडिशा की अंजलि मुंडा ने महिलाओं की 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में स्वर्ण पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारोत्तोलन में असम की मोनिका सोनोवाल ने 48 किलोग्राम वर्ग और मिजोरम के इसाक माल सावमत लुआंगा ने 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता के तीसरे दिन कल तैराकी, भारोत्तोलन, हॉकी, फुटबॉल और कुश्ती के मुकाबले होंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
पदक तालिका में कर्नाटक 8 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पहले स्थान तथा उड़ीसा 5 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक ओलावृष्टि के साथ आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी चलने की आशंका जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने फिर कहा, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं, 74 दिनों की आरक्षित क्षमता सुनिश्चित। इसराइल के ईरान पर फिर हमले करने से पश्चिम एशिया संघर्ष तेज। इसराइल का होर्मूज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही रोकने के जिम्मेदार ईरान के नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसीरी के मारे जाने का दावा किया। भारत आयात पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा और स्टार्टअप आधारित खनन तंत्र को मजबूत कर रहा है। भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी देश के विभिन्न हिस्सों में मनाई जा रही है। और दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-20 चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।